आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो, गुड इवनिंग। 19 मई है आज, शुक्रवार की शाम, और आपकी फेवरेट पॉडकास्ट दिन भर के साथ हाजिर हूं मैं, नितिन ठाकुर। RBI 2000 के नए नोट छापना बंद कर रहा है। इस फैसले के पीछे की वजह क्या है और बाजार में मौजूद नोटों का क्या होगा, ये जानेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। कोर्ट ने जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इसी की रिपोर्ट आज सामने आई है। किन सवालों के जवाब मिले हैं इस रिपोर्ट में और कौन से पहलू सामने आए, ये बात करेंगे। उधर पाकिस्तान में भारी उथल पुथल है, जबरदस्त पावर स्ट्रगल चल रहा है। इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी आमने सामने हैं। उनके कई समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये टकराव किस हद तक जा सकता है, इसमें जीत किसकी होगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन आज शुरू हो गया। PM मोदी भी इसमें शामिल होंगे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होनी है। तो इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है, ये जानने की कोशिश होगी। और उधर आजकल जो है गर्मी अपने शबाब पर है, हर कोई परेशान है। लेकिन आपको ये कहा जाए कि गर्मी की वजह से आने वाले सालों में करोड़ों नौकरियां जाने वाली हैं, तो आप यकीन कर सकेंगे? क्लाइमेट चेंज पर आई एक रिपोर्ट ऐसा कहती है। और क्या क्या इस रिपोर्ट में, आपको बताएंगे। और आखिर में आएगा भौचक, लेकिन फिलहाल सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से।
शुक्रिया नितिन। RBI नहीं छापेगा 2000 के नए नोट, बाजार में मौजूद नोट रहेंगे वैध। कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण कल। राहुल और प्रियंका को न्योता देने पहुंचे सिद्धारमैया और DK शिवकुमार। 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी बरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला। आर्यन खान केस से चर्चा में आए NCB अधिकारी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से 22 मई तक राहत। कल CBI के सामने होंगे पेश। G7 बैठक में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचे। कल यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक टली। कार्बन डेटिंग पर जारी रहेगी रोक। ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को कल CBI ने किया तलब। NIA ने कनाडा के लिस्टेड आतंकी अर्शदीप के 2 सहयोगियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर किया अरेस्ट। आनंद मोहन की रिहाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिया। और IPL में आज पंजाब किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से हो जाएगी एलिमिनेट।
यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। November 8, 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया था और 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलन से हटा दिया था। इसके बाद RBI 2000 रुपये के नए नोट लेकर आई थी, लेकिन आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के इस नोट पर बड़ा फैसला लिया है। 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ने देश के सभी बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के जो नोट हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से जारी करना अब बंद कर दिया जाए। तो क्या वजह रही कि 7 साल बाद इस नोट को सर्कुलेशन से हटाया जा रहा है, और मार्केट में जो नोट सर्कुलेशन में हैं उनका क्या होगा, यह हमने पूछा बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाली बिजनेस टुडे TV की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट करिश्मा सुदानी से।
देखिए, ये क्लीन पॉलिसी इनिशिएटिव है जो RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ रेगुलेशन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम पर इन्होंने निकाला है। इस क्लीन नोट पॉलिसी इन्होंने ये पहली बार नहीं ली है, ये 2013-2014 में भी ली गई थी, और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जबकि हम आज तक के थ्रू ये बताना चाहेंगे कि इसको इन्हें अगले स्टेप क्या करना चाहिए। इन्हें पहला स्टेप ये करना चाहिए कि इनके पास जितने भी 2000 के नोट है वो May 23 के शुरू होते हुए बैंक में जाके डिपॉजिट करने चाहिए, और ये डिपॉजिट कर सकते हैं लिमिट ऑफ 20,000 रुपीज का एक टाइम पर किसी भी बैंक में स्टार्टिंग May 23, जो बिल्कुल अगले हफ्ते है।
अब तक की जानकारी जो आई है उसके मुताबिक 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है, और इसकी सीमा 20,000 रुपये है। वैसे इस ऐलान के बाद लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं कि आज के बाद बाजार में 2000 के नोट लेगा कौन, और अगर कोई दुकानदार नहीं लेगा तो प्रैक्टिकली फिर वो लीगल टेंडर कैसे रह गया। तो क्या नोटबंदी ना होकर भी ये नोटबंदी ही है? आरबीआई ने जिस वेब लिंक पर प्रेस रिलीज जारी की है वो फिलहाल खुल नहीं रही और उम्मीद ये है कि आगे और भी स्पष्टीकरण आएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने जनवरी महीने में एक रिपोर्ट जारी की थी और अदाणी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप की कंपनियों को ओवर वैल्यूड बताया गया, अकाउंट्स में हेर फेर का आरोप भी लगा। हिंडनबर्ग के आरोपों को अदाणी ग्रुप ने तो सिरे से खारिज किया था, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया, संसद से सड़क तक खूब बवाल मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहरी तक पहुंचा तो कोर्ट ने जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने इस इंडिपेंडेंट कमेटी को जो काम सौंपे थे उसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बनी सिचुएशन का ओवरऑल असेसमेंट करना था, किसी तरह के रेगुलेटरी फेल्योर की जांच करना था और हाल के दिनों में सिक्योरिटीज मार्केट में आई इनस्टेबिलिटी के कारण ढूंढने थे। 6 मई को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और अब जो है ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो इस रिपोर्ट की मोटी मोटी बातें क्या है, ये हमने पूछा बिजनेस टुडे की साक्षी भारद्वाज से।
तो सबसे पहले तो जो फाइंडिंग ये है कि कमेटी ने सेबी को बताया है कि सेबी ने ये फ्लैग किया है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मिले हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुई हैं, किन स्टॉक्स को रिलेटेड हुई हैं, किन ग्रुप स्टॉक्स के ऊपर हुई हैं, ये सब अभी क्लैरिटी नहीं आई क्योंकि अभी भी सेबी इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप पिछले कुछ साल की बात करें 849 अलर्ट्स जनरेट हुए थे स्टॉक एक्सचेंजेस में जो जनरेट हुए और इसकी रिपोर्ट सेबी को दी गई थी, सौंपी गई थी स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा, जिसमें अदानी स्टॉक्स के ऊपर इस तरीके के अलर्ट्स जारी हुए थे। और इसमें भी बाद में पता चलता है सेबी के द्वारा कि अलर्ट्स किस वजह से आए हैं, क्या यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी अभी भी नहीं हुई है। फिर पता चला है कि जो इन्फॉर्मेशन है FPI इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेशित थे और ख़ास तौर पर 7 ज्यूरिसडिक्शंस 7 अलग अलग देशों में ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मौजूद थे जिनका कहीं ना कहीं लिंक आ रहा है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। अब उनका कितना ओनरशिप है इसको लेकर भी काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये भी अभी क्लैरिटी नहीं मिली है। दूसरा एक और जो चीज़ आई है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है हमारा कई दफ़ा चेंज किया गया है पिछले कुछ साल में, अब उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट अदानी ग्रुप में देखने को मिला है ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। दूसरा कि क्या इन रेगुलेटरी चेंजेस को इसलिए बदला गया है कि कुछ कंपनियों को फ़ायदा हो या इसलिए बदला गया है कि कुछ कंपनियों में चेंजेस हो रहे थे उनको कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ कुछ जो स्टेटमेंट्स आए हैं आधे अधूरे स्टेटमेंट्स आए हैं, इस वजह से कोई भी कंक्लूजन हम नहीं कह सकते कि अभी तक हमें मिला है इस रिपोर्ट के ज़रिए। दूसरा जो ये है ये इंटरिम रिपोर्ट है, यानी कि पूरी तरीके से ये कंक्लूसिव नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें सेबी की फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब तक सेबी की तरफ से अब 3 महीने का समय मिला है 14 अगस्त तक का, जब तक सेबी पूरी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स नहीं देती तब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी।
अच्छा साक्षी, कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसने किस लेवल तक जाकर इन्वेस्टिगेट किया है और इस रिपोर्ट के जो निष्कर्ष हैं वो किस आधार पर निकाले गए?
तो अदानी हिंडनबर्ग केस में ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, अंतरिम रिपोर्ट जो सबमिट हुई है 173 पेज की रिपोर्ट है, तो आप जान सकते हैं कि कितनी एक्सटेंसिव रिपोर्ट है। अब इस कमेटी ने ये बताया है कि हमने मार्केट वॉलीटिलिटी को देखा है, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस कितना हिट हुआ है इसकी वजह से उसको जाँचा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हमारा है कैपिटल मार्केट्स का रेगुलेटरी सिस्टम जो है उसे जाँचा है, इन्वेस्टर्स को कितनी अवेयरनेस है किसी भी प्रक्रिया के बारे में इसके बारे में जानने की कोशिश की है, और जो अभी तक अदानी कंपनियों में इन्वेस्टिगेशन चालू है अलग अलग एजेंसी द्वारा खास तौर पर सेबी द्वारा उसको भी हमने जांचा है। ये बेसिस है उनके फाइंडिंग्स का, इन सब चीज़ों को उन्होंने जांचा है।
अच्छा एक बात और है साक्षी, कहा गया कि सेबी 13 विदेशी एंटिटीज़ के ऑनरशिप की जाँच 3 साल से कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो रही, इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं?
जी, इसके पीछे भी जो मैंने आपको बताया कि 7 ज्यूरिसडिक्शंस हैं, अलग अलग देशों में ये फॉरेन इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, अब वो भी अलग अलग रेगुलेटर्स के अंडर आते हैं, कई बार आपको इंटरनेशनल एजेंसी सपोर्ट करती हैं आपकी अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में, कई बार नहीं सपोर्ट करती हैं, और ये जो 13 एजेंसीज हैं इनकी ओनरशिप का इसलिए अभी तक सेबी को पता नहीं चल पाया है। सेबी ने बार बार कोर्ट में ये बोला है कि उनको समय चाहिए क्योंकि मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और देश के बाहर उनको जाकर पता करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है कि कौन सी कंपनियां हैं जो लिंक्ड हैं अदानी ग्रुप से, क्या उन्होंने किसी तरीके की जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एलिगेशंस लगाई गई थी कि यहां पर मैनिपुलेशन हुआ है प्राइसेस का, तो कौन सी कंपनियां हैं जो ऐसा कर रही हैं, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस तरीके की इरेगुलरिटीज पहले से पता चली हैं, वो करने के लिए भी उनको बहुत समय चाहिए, इसलिए पहले उन्होंने 6 महीने का समय मांगा था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 महीने का समय दिया है।
अच्छा साक्षी, आज जो ये रिपोर्ट आ गई है तो फिर अदानी के शेयर्स पर इसका क्या असर दिखाई पड़ रहा है?
तो 10 स्टॉक्स लिस्टेड हैं अदानी ग्रुप के, जिसमें 2 अभी हाल ही में अक्वायर्ड कंपनीज हैं, ACC और अंबुजा। 10 के 10 स्टॉक्स में पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिला। इमीडिएट रिएक्शन 1-2% तक का था। ज़्यादातर स्टॉक्स ऑलमोस्ट 2-2.5% तक बंद होते हुए नजर आए। कुछ एक स्टॉक्स में 5% तक का अपर सर्किट भी लगा है। कुछ स्टॉक्स जो कि 5% लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहे थे शुरुआती सेशन में, उनमें भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो सभी में एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है, यानी कि वो ये डिसाइफर कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप के फेवर में।
तो फिलहाल सेबी इस मामले की जांच कर रही है और इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 14 अगस्त तक की मोहलत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन की आज शुरुआत हो गई है। हिरोशिमा वही शहर है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परमाणु हमले से तबाह हुआ था। इस मीटिंग में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम पहुंचकर उस घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जापान G7 ग्रुप के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और जापान के अलावा इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी इसके मेंबर हैं। भारत को इसमें गेस्ट नेशन यानी कि अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। 21 मई तक चलने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान पहुंचे हैं। वहां वो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि G7 की बैठक में पीएम मोदी दूसरे देशों के साथ शांति, स्थिरता, खाद्यान्न, ऊर्जा, तकनीक और उर्वरक जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। इस मीटिंग से जुड़ी एक और खबर सामने आई, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जापान पहुंच रहे हैं। कल शाम उनकी मुलाकात पीएम मोदी से भी होने की बात चल रही है। पिछले साल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से पीएम मोदी और जेलेंस्की की ये पहली मुलाकात होगी, अगर होगी। इसका एजेंडा क्या रहने वाला है, हमने पूछा इंटरनेशनल मामलों के जानकार और JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर अमिताभ सिंह से।
कि ये मुलाकात बहुत अहम और महत्वपूर्ण होने जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए भी होने जा रही है क्योंकि भारत को चीन के साथ जोड़ के और तुर्की, इंडोनेशिया जितने भी ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं उनके साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि ये उस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं जिस तरह से डेवलप्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है, तो उस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। दूसरा है कि भारत इस समय G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज का चेयर है, तो उस लिहाज से भी भारत या नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग जेलेंस्की से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ये तो अभी कयास ही लगाया जा रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि ये मीटिंग अवश्य होगी। उसके अलावा जो मुद्दे होंगे जो अब तक इस पर आते रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि भारत की जो तेल खरीद है या भारत जो खुलकर यूक्रेन के पक्ष में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में या डिप्लोमेटिकली नहीं आ रहा है या वो वॉर को कंडेम नहीं कर रहा है, उसकी भर्त्सना नहीं कर रहा है, उस पर भी कुछ बात होगी। लेकिन इसको G7 के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए और ऐसा नहीं है कि पहली बार G7 के समिट में भारत गया है। 4-5 साल से लगभग लगातार वो जा रहा है, 1 साल छोड़ के 2019 छोड़ के। तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मीटिंग बहुत अहम होगी इस मामले में।
अमिताभ जी, G7 के मंच पर भारत की मौजूदगी ऐसे वक्त में जब इंडिया खुद G20 की चेयरमैनशिप भी संभाल रहा है, तो इसमें भारत और G7 ग्रुप के क्या फायदे आपको लगते हैं जो निहित हैं?
देखिए, मैं तो थोड़ा सा शंकित हूं कि भारत को G7 ग्रुप में या डेवलप्ड कंट्री के नेशंस के साथ मिलके अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे सोचना चाहिए। ऐसा मेरे हिसाब से सही नहीं होगा इस समय, क्योंकि भारत एक ग्लोबल साउथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट वॉइस है। और जहां तक G7 समिट है, देखिए अगर आप G7 के GDP को देखें 1999 2000 के आसपास, ये करीब विश्व का 50% GDP में कंट्रीब्यूटर थे, आज वो घटकर 30% रह गया है। और इसके अपेक्षा G20 एक ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था या एक मंच बना है, जिसमें भारत शिरकत करता है और भारत के अलावा और भी राष्ट्र जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज नहीं है वो भी इसमें साथ है। तो G7 के बजाय G20 को सशक्त करना होगा। और हम सबको याद है कि रूस आज से 9 साल पहले भी इसका सदस्य था, उसको निकाला गया था और 97 में वो उसका सदस्य बना था और 2014 तक इसका सदस्य रहा था। तो ये G7 को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए, G20 को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। और साथ ही साथ भारत को इस बात पर बल भी देना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम है उसको भी मजबूत किया जाए, क्योंकि वही एक संस्था है जो वैश्विक संस्था है जिसमें सब लोगों का और दुनिया के लोगों जो अदरवाइज G7 G20 या उस ब्लॉक में नहीं है उनकी आस्था है, तो उसको सशक्त करने पर भी यहाँ पर बल देना होगा।
अच्छा, G7 देशों ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस बढ़ाने और उसकी वॉर मशीनरी बर्बाद कर देने पर तो सहमति जता दी है। रूस के साथ भारत के जैसे संबंध हैं, ऐसे में वहां पीएम के लिए असहज करने वाली स्थिति नहीं होगी?
देखिए, भारत रूस यूक्रेन युद्ध का विरोधी है, इसमें तो कोई मत नहीं है। और जिस तरह से ये युद्ध बढ़ता जा रहा है जो नेवर एंडिंग हो गया है, करीब आज 450 दिन हो गए, और इसका भयावह स्वरूप लेने का भी डर है कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, ये सारी दिक्कतें भारत समझ रहा है और इसी के चलते ये युद्ध का विरोध कर रहा है। और भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में रूस के राष्ट्रपति को कह दिया था कि ये युद्ध का युग नहीं है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भारत युद्ध का विरोधी है और भारत युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। हाँ, हमारी दोस्ती और हमारा विश्वास रूस पे बहुत ज्यादा है जो हमें रिस्ट्रेन कर रहा है कि हम इससे बियॉन्ड नहीं जाएं और सैंक्शंस को हम ये न करें। और भारत की अपनी भी आर्थिक मजबूरियां हैं जिनके चलते वो नहीं कर रहा है और जिसको पूरी दुनिया समझती है कि ये गलत नहीं हो रहा है। तो उस संदर्भ में अगर देखें तो भारत का वहां होना असहज होने की नहीं बल्कि भारत को और सशक्त करेगा और G7 के लेजिटिमेसी को, वैधता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ज्यादा लेजिटिमेट रूप में देखा जाए, एक ज्यादा वैध रूप में देखा जाएगा नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में।
तो भारत जो है शुरुआत से इस युद्ध के अगेंस्ट रहा है और शांति बहाली का हिमायती भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अराजकता और अशांति का माहौल है। करप्शन के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में जबरदस्त हिंसा भड़क उठी थी। पाकिस्तान की सियासत को अपने इशारों पर नचाने वाली फौज के साथ इमरान का टकराव अब जो है लगातार बढ़ रहा है। इमरान खान का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तानी फौज उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने परसों ऐलान किया कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले उनके समर्थक आतंकवादी हैं और इमरान खान ने उन्हें अपने घर के भीतर छिपा रखा है। इसलिए लाहौर के जमान पार्क में इमरान खान के घर की घेराबंदी पिछले 2 दिनों से चल रही है। पंजाब पुलिस को उनके घर की तलाशी के लिए कोर्ट से सर्च ऑपरेशन वारंट भी मिल चुका है। वहीं इमरान ने ट्वीट करके फिर से शहबाज शरीफ पर निशाना साधा, कहा कि पीटीआई और उनके समर्थकों पर जो भीषण और आतंकी कार्रवाई की जा रही है ऐसी स्थिति मुशर्रफ और जिया के मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं थी। इसके पीछे ऐसी मानसिकता है कि हम पाकिस्तान के लोग भेड़ के झुंड जैसे हैं जिन्हें बल के जोर पर झुकाया जा सकता है लेकिन हम कभी नहीं झुकेंगे। तो पाकिस्तान की यह तकरार किस दिशा में बढ़ रही है, कहां जाकर रुकेगी, हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से।
देखिए, पाकिस्तान का अगर आप हिस्ट्री जाने, उसका इतिहास जाने, पॉलिटिकल इतिहास, तो हमेशा पाकिस्तान आर्मी की जीत होती है। यहाँ पर इमरान खान को अब ऑप्शन दिए गए हैं, ये देखना होगा कि इमरान खान किस ऑप्शन या किस हद तक जाएंगे और फिर किस हद तक जाएंगे और झुक जाएंगे, ये देखना ज़रूरी है। एक है कि उन पर अब जो पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रही है कि उनको, कि उनके पूरे पार्टी को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दें। अगर ऐसा होता है तो न केवल इमरान खान का टॉप लीडरशिप भी, उनको भी जेल हो जाएगा। दूसरा है करप्शन चार्जेस पे ही उनको बड़े लंबे अरसे तक अंदर करने की कोशिश, जहाँ पे जुडिशरी इमरान खान की मदद कर रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी ने मिलिट्री कोर्ट्स फिर से रीइंस्टेट कर दिए जो बंद कर दिए गए थे, अगर फिर से उसको एस्टैब्लिश कर दिया तो उन मिलिट्री कोर्ट्स के तहत, आर्मी एक्ट के तहत इनको बड़ी लंबी सजा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि May 9th एक टेररिस्ट घटना था। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपके लिए प्लेन खड़ा है, आप देश से निकल जाइए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो अब आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री और बाकी जो कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है PTI को तोड़ना। काफ़ी सारे लीडर्स ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है जो May 9th में जो घटना घटी वो सही नहीं था। दूसरे काफ़ी सारे इसलिए बड़े नाखुश हैं इमरान खान से क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया इस पूरे घटना को, यानी कि लीडरशिप को उठा रहे थे तो उनके बारे में बात नहीं किया, जब बाहर आए अपने बारे में ही बात करते रहे। तो यही ऑप्शंस रह गए हैं, एंड गेम में कहीं ना कहीं इमरान खान झुके हुए नज़र आ सकते हैं।
अच्छा गीता, भारत के लिहाज से देखें तो शहबाज शरीफ का वहाँ सत्ता में बने रहना या इमरान खान का पॉलिटिकली इरेलेवेंट हो जाना, क्या बेहतर ज़्यादा है?
भारत ने हमेशा यही सोचा है कि एक अनस्टेबल पाकिस्तान किसी के भी एडवांटेज में नहीं है, किसी के हक में नहीं है, ना पाकिस्तान के हक में, ना भारत के हक में, ना अफगानिस्तान के हक में, ना ही रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के हक में। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया ये चाहेगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री उस देश को कंट्रोल करते आ रहा है, उसके जगह अगर सही मायने में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आयरनी आप देखिए, आयरनी ये है कि ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसने इमरान खान को पैदा किया, उसको क्रिएट किया नवाज शरीफ को हटाने के लिए। आज उनके भाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं इमरान खान को हटाने के लिए। नवाज शरीफ अभी भी एक्साइल में लंदन में बैठे हुए हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस हैं, जो उनके साथ किया था जब वो सरकार में थे और इमरान जब इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाखुश हो गई थी, उनको बाहर कर दिया इमरान खान के मदद से, आज वही दोहराया जा रहा है फिर से इमरान खान को लेके। तो ये सिचुएशन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। एंड भारत कभी नहीं चाहेगा कि ये ऐसा जो सिविलियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो जारी रहे, वो चलता रहे। कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन रियलिटी यही है कि पाकिस्तान में इस तरीके का बदलाव जहां मिलिट्री का रोल थोड़ा कम नज़र आए, ऐसा होने से रहा।
तो पाकिस्तान के राजनीतिक संकट पर भारत की भी नज़र रहने वाली है और हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गीता। दुनिया भर में हो रहे जॉब लॉस को मंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों हजार एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। ऐसे में कोई आपको कहे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले 7 सालों में करोड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी तो आपको हैरत जरूर होगी। पिछले दिनों RBI की एक रिपोर्ट आई जिसमें इंडिया की इकोनॉमी पर क्लाइमेट चेंज के असर का ब्यौरा दिया गया। कहा गया कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके मुताबिक अपनी इंडस्ट्रीज को ढालने के लिए 2030 तक भारत करीब $1 trillion यानी कि 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़े जर्नलिस्ट सम्राट शर्मा ने इस रिपोर्ट की स्टडी की है। हमने उनसे पूछा कि क्लाइमेट चेंज के जानमाल पर असर को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा वो बताइए।
सुनने में ये चीज़ें थोड़ी अटपटी लगती हैं, पर डायरेक्ट इम्प्लिकेशन है क्लाइमेट चेंज का और इकोनॉमिक उसका कॉन्सिक्वेंस जो है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि अभी भी हम लोग बहुत एम्बिशियस गोल्स लेके चल रहे हैं। अगर टेम्परेचर राइज 2030 तक 2 डिग्री से कम भी होता है तो उसका जो GDP इम्प्लिकेशन है वो लगभग 1.5% का है। तो वही अगर 2% टेम्परेचर राइज हो गया, चाहे NDC कहते हैं कि नेशनली डेवलप्ड जो एजेंडा होता है वो उसकी बात होती है, चाहे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से चीज़ें हों, तो अगर अभी जो गोल्स है उसके हिसाब से भी हम लोग चलें तो भी लगभग 4% का GDP लॉस 2030 तक हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग होना कोई बहुत अनोखी बात नहीं हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास वी हैव ऑल द रीजंस कि वी शुड वरी अबाउट इट, कि अगले 5 साल में से कोई 1 साल या शायद 5 साल ऑन रिकॉर्ड वार्मेस्ट हो सकता है, हॉटेस्ट जो अभी तक के रिकॉर्ड में है। तो इसका जो इम्प्लिकेशंस है GDP पे वो अब आना शुरू होगा। मैं अगर तोड़ तोड़ के बात करूं कि सेक्टर वाइज कैसे होगा, तो हर किसी को पता है कि भारत एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान है उसका लेबर मार्केट एटलीस्ट, तो उसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्रॉप साइकिल चेंज होता है। इंडस्ट्री की बात करें तो जो कॉस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको नए गोल्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। वहीं अगर आप सर्विसेज की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के कारण अगर आप कोई जान हानि का नुकसान होता है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम्स भी बढ़ जाता है। तो ये सब फाइनेंशियल सेक्टर पे भी काफ़ी अफेक्ट डालता है। और इन सब के कारण अगर जान माल का नुकसान होगा तो लेबर मार्केट का ऐसा है कि वो अपने गांव की तरफ वो भागेंगे, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज ज़्यादा है उस जगह से उन जगहों की तरफ जाएंगे जो जगह थोड़ी सेफ है। तो लेबर मार्केट हो जाए, चाहे सर्विस सेक्टर हो जाए, चाहे इंडस्ट्री हो जाए, चाहे एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 8 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं 2030 तक सिर्फ हीट वेव के कारण। पर कंसर्न की बात यह है कि उन 8 करोड़ में से लगभग 3.5 करोड़ सिर्फ इंडिया में ही है। तो लेबर लॉस और उस लेबर की प्रोडक्टिविटी लॉस और जो जॉब लॉसेस है उसका इम्प्लीकेशन शायद हीट वेव के कारण सबसे ज़्यादा इंडिया में ही देखने को मिले, क्योंकि लोग अगर फसल बर्बाद होती है तो लोग जल्दी से जल्दी अपने घर जाकर उन फसलों को बचाना चाहेंगे। अगर जान माल का नुकसान होता है, अगर बहुत भीड़ बहुत गर्मी होती है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी पलायन होगा। तो जो इकोनॉमिक सेंटर्स है उससे जो रिवर्स माइग्रेशन वो देखने को मिल सकता है।
अच्छा सम्राट, क्लाइमेट चेंज के पीछे जो अहम फैक्टर है कार्बन एमिशन है, इसको लेकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा भी खूब सुनते हैं हम। कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई में सबसे ज़्यादा CO2 एमिशंस देखने को मिलता है। उसके बाद आपको मेटल प्रोडक्ट्स कोई बनाने में, जैसे स्टील हो गया, एलुमिनियम हो गया, इनमें। फिर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट पे जो जहाज़ चलते हैं उनमें जो एमिशंस हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो एमिशंस की बात मैं कर रहा हूँ ये है पर कैपिटा, $1 million के प्रोडक्शन में कितना CO2 का एमिशन होता है उसके बेसिस पर है। तो इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई सबसे टॉप पर है, मेटल प्रोडक्ट्स है, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। लोग सोचते हैं कि पानियों के आने जाने में क्या है, पर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा है। और लैंड ट्रांसपोर्ट में जैसे गाड़ियाँ चलती है उनमें तो है ही, पर हालांकि लैंड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा है, और बाकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और कंस्ट्रक्शन ये सब में काफ़ी कम है।
तो हीट वेव अब तक जान लेती थी, अब जॉब्स भी ले सकती है। क्लाइमेट चेंज को ऐसे ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट। वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, आ गए हमारे दोस्त जमशेद।
एक दौर था जब हिंदुस्तान के आंगन की कपड़े सुखाने वाली रस्सियों पर दादा, चाचा, पापा के कपड़े एक साथ सूखते थे। तीज त्योहारों पर सब मिलकर जश्न मनाते थे। किसी बच्चे का बर्थडे होता था तो घर के सारे कजन मौजूद होते थे। कोई दुख का लम्हा हो, कोई खुशी का मौका हो, संयुक्त परिवारों में वक्त के नरम और नुकीले झोंके मिलकर सहे जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब हमारे मोहल्ले न्यूक्लियर फैमिलीज के ग्रुप्स में तब्दील हो गए हैं। ये अच्छा है या बुरा इस पर चर्चा अलग से हो सकती है, लेकिन अब घरों का मतलब ही पापा, मम्मी और बच्चे हो गया है। लेकिन भौचक खबर में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे परिवार से जिसमें 10-20 नहीं 185 सदस्य हैं। ये घर अजमेर के नसीराबाद उपखंड के रामसर गांव में है और इस घर में 185 लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। परिवार के मुखिया हैं भंवरलाल माली। परिवार के सभी फैसले भंवरलाल ही लेते हैं और ये बताते हैं कि परिवार के लोगों के लिए 75 किलो आटे की रोटियां रोजाना बनती हैं, जो लगभग 10 चूल्हों पर बनाई जाती है। परिवार के एक सदस्य भागचंद माली ने हमें बताया कि सबके साथ रहने की सीख उनके दादा ने दी थी, जिनका नाम था सुल्तान माली, और उस वक्त ये फैसला लिया गया था कि उनके 6 बेटे अपने अपने परिवार के साथ इसी घर में मिलजुल कर रहेंगे। भंवरलाल सबसे बड़े बेटे हैं, उनके बाद रामचंद्र, मोहन, छगन, बिरदीचंद और छोटू हैं। एक ही घर में 6 परिवार मिलजुल कर रहते हैं। इस घर में 55 पुरुष, 55 महिलाएं और 75 बच्चे हैं। और हाँ, मजे की बात यह है कि इस घर को चुनाव के वक्त खास तौर पर तवज्जो दी जाती है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी नहीं चाहता कि इस घर के 125 वोट उनके हाथ से निकल जाए। भंवरलाल साहब का ये परिवार एक साथ रहते हुए अच्छे से फल फूल रहा है। किसी जमाने में सिर्फ खेती पर निर्भर ये परिवार अब डेयरी और बिल्डिंग मटेरियल का काम भी करता है। मुखिया भंवरलाल कहते हैं कि भले इस जमाने में लोग छोटे छोटे परिवारों में बट गए हैं, लेकिन असली मजा तो संयुक्त परिवार में रहने का ही है। बात तो सही है, जब एक ही परिवार के सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तो हर दिन ईद और हर रात दिवाली लगती है। सुबह सवेरे जब सारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं तो लगता है कि कोई छोटा मोटा स्कूल घर पर ही खुल गया है। हमें भी याद आ रहा है हमारे बचपन का वो वक्त जब हम सब चाचा दादा सब साथ में रहते थे और रात में खाने का दस्तरखान लगता था तो लगता था कि कोई छोटा मोटा फंक्शन है घर में। रात को छतों पर लेटना, कहानी सुनना, मौज काटना। नए दौर में सारे सुख सुविधाओं के साथ हम अपने फ्लैट्स में सुकून से रहने की कोशिश तो करने लगे हैं, लेकिन शायद यही वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी डिप्रेशन, अकेलापन और कई तरह की साइकोलॉजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। तो भंवरलाल जी के इस 145 सदस्यों वाले घर के सभी सदस्य यूं ही मोहब्बत से साथ रहें, यही हमारी दुआ है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो।
बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। हफ्ते के आखिरी दिन भर में आज इतना ही। वीकेंड पर हमारे बाकी पॉडकास्ट आते रहेंगे, प्लीज सुनिएगा। और कुछ कहना हो तो radio@aajtak.com पर ईमेल कीजिए, और लिखना ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 9953233303 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ वॉइस नोट भेज सकते हैं। आज का दिन में प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आज तक रेडियो सुनते रहिए और हैप्पी वीकेंड।